यशवर्धन से डील होने के बाद राघवेंद्र ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नाम खुद से ही पीछे ले लिया था। यशवर्धन वैदेही की मदद से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर पाया था, इस वजह से राघवेंद्र वैदेही से बहुत गुस्सा था। वो गुस्से में वैदेही के घर गया। वैदेही उस वक्त घर पर अकेली थी और अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। राघवेंद्र वैदेही के घर के आगे खड़ा था और लगातार डोरबेल बजाया जा रहा था। ये देव पागल हो गया है क्या जो बार बार डोरबेल बजाया जा रहा है? वैदेही ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आई। अरे बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है जो एक मिनट का भी सब्र नहीं होता तुमसे? वैदेही ने दरवाज़ा खोला। सामने राघवेंद्र को देखकर वो हैरान थी। वैदेही समझ गई कि राघवेंद्र वहाँ के सिरादे से आया होगा। वो जल्दी से वापस दरवाज़ा बंद करने लगी कि राघवेंद्र दरवाज़ा बंद होने से पहले अंदर आ गया। कमाल की बात है वैदेही जी, हम यहाँ आपसे आपके घर पर मिलने आए हैं और आप हमें देखकर दरवाज़ा बंद कर रही हैं, ये तो बहुत गलत बात है, बोलते हुए राघवेंद्र ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आप मुझे देखकर घबरा क्यों रही हैं? कहीं आपने ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से मैं आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ और आपको मुझे यहाँ देखकर घबराहट हो रही है? बोलते हुए राघवेंद्र अपने कदम वैदेही की तरफ बढ़ा रहा था। राघवेंद्र को अपनी तरफ बढ़ता देख वैदेही पीछे की तरफ बढ़ रही थी। उसने दौड़कर टेबल पर पड़ा वास उठाकर राघवेंद्र की तरफ किया। चले जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि यहाँ तुम्हारा मर्डर भी हो गया तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सबूत है मेरे खिलाफ? मुझे नहीं लगता कि आपके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत होगा। राघवेंद्र अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो वैदेही की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वैसे कमाल लग रही हैं आज आप, लगता है आपको पहले ही पता चल गया था कि आज दुनिया में आपका आखिरी दिन होने वाला है, इसीलिए इतना तैयार होकर बैठी हैं। देखो राघवेंद्र, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वैदेही ने अपनी घबराहट को काबू करके कहा। राघवेंद्र फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ा और उसको बाजुओं से पकड़कर उसे दीवार से लगा लिया। वैदेही ने राघवेंद्र पर वास से हमला करना चाहा, लेकिन उसने उसका हाथ कसकर दीवार से लगा रखा था। वैदेही राघवेंद्र की पकड़ से छूटने के लिए कसमसा रही थी। आपको लाचार देखकर बहुत बुरा लग रहा है, कहाँ आप हमेशा नारी शक्ति का झंडा लेकर खड़ी रहती हैं और कहाँ आज मेरी पकड़ से भी नहीं छूट पा रहीं, राघवेंद्र ने उसके बिल्कुल पास आकर कहा। दूर हो जाओ वरना मुझे मॉलेस्ट करने के चार्जेस अलग से लगेंगे। क्या बात कर रही हैं वैदेही जी, आप मुझ पर मॉलेस्ट करने के चार्जेस लगाएंगी? जबकि मेरे पास तो पूरा मौका था, मैं चाहता तो आपके साथ बहुत कुछ कर सकता था, वैदेही ने कसमसाते हुए कहा। कल तुमने कुछ नहीं किया, तब मुझे तुमने एक इंसान नजर आ रहा था, लेकिन आज? वैदेही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले राघवेंद्र ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। प्यार तो हमें भी बहुत आ रहा था जब कल आपको वहां पर उस हालत में फंसे हुए देखा था। आपको वहां देखकर लगा था कि आप इतनी भी बुरी नहीं हैं, बस हालात में आपको ऐसा बना दिया है, लेकिन हमेशा की तरह वो भी आपका धोखा था। कल आपको बचाने के बाद आज हम आपके साथ ये करेंगे, हमने सोचा नहीं था। राघवेंद्र ने वैदेही का मुंह बंद कर रखा था, इस वजह से उसका दम घुट रहा था। वैदेही ने अपना पूरा जोर लगाया और उसके पेट पर जोर से लात मारी। अगले ही पल राघवेंद्र वैदेही से दूर अपने पेट को पकड़कर खड़ा था। दम तो बहुत है आप में, लेकिन हमें भी कम मत समझिएगा, बस आपकी नाजुक कलाइयाँ देखकर जबरदस्ती करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आपके हाथ पर तो बहुत मजबूत हैं। राघवेंद्र भागकर वैदेही की तरफ बढ़ा। वैदेही उसके इरादे समझ गई थी, उसने फुर्ती दिखाई और भागकर कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। भागदौड़ में वैदेही का दुपट्टा राघवेंद्र के हाथ में था। उसने जल्दी से अंदर जाकर अपना मोबाइल लिया और यशवर्धन को कॉल करने लगी। यशवर्धन के पास उसका मोबाइल मौजूद नहीं था, इस वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। अंदर से कोई आवाज़ न आती देखकर बाहर राघवेंद्र जोर से हंसा और फिर बोला, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिला रही हैं तो पहले ही बता देते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसके पास उसका मोबाइल नहीं होगा। बाकी यकीन मानिए, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे वैदेही जी, हम तो बस थोड़ा सा खेल रहे थे। मैं कोई खेलने की चीज़ नहीं हूँ राघवेंद्र प्रताप सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने की, वैदेही अंदर से गुस्से में चिल्लाई। यकीन मानिए वैदेही जी, मैं आपके साथ ये सब नहीं करना चाहता था, मैं किसी और इरादे से यहाँ पर आया था, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, अब तो पुलिस आने पर ही बात होगी, वैदेही पुलिस को बुलाने के लिए कॉल करने लगी। हम अपनी आई और छोटे भाई मानव की कसम खाकर बोलते हैं कि आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे, प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हम जानते हैं कि हमने आपके साथ थोड़ी देर पहले अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन हम बहुत गुस्से में थे, तुमने थोड़ी देर पहले जो भी करने की कोशिश की उसके बाद मैं तुम पर कैसे यकीन कर सकती हूँ, आप जानती हैं ना कि हम अपने भाई और माँ से कितना प्यार करते हैं, उनकी कसम खाकर बोला है, इसका मतलब कुछ गलत नहीं करेंगे, अगर आज आपने हमारी बात नहीं सुनी तो ज़िंदगी भर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। वैदेही जी, आप जिस पर विश्वास कर रही हैं वो यश बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, राघवेंद्र ने गिड़गिड़ा कर कहा।
वैदेही ने राघवेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन साथ ही उसने अपना मोबाइल भी साइड में रख दिया था। मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो ये बताने के लिए यहाँ तक आ गया। और कुछ भी हो, ये इंसान बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, वैदेही ने सोचा। वो राघवेंद्र से बात करना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले राघवेंद्र ने उसके साथ जो भी किया उस वजह से उसे उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। वैदेही ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से रिवॉल्वर निकाली। उसने उसे लोड किया और सामने की तरफ करके दरवाज़ा खोला। अगर थोड़ी भी होशियारी करने की कोशिश की या मेरे साथ कुछ भी गलत करने का सोचा भी तो उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगी, वैदेही ने रिवॉल्वर उसके सामने करके कहा। राघवेंद्र ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और सामने लगे काउच पर बैठ गया। तुम अपने हाथ नीचे कर सकते हो, बोलो तुम्हें मुझसे क्या कहना था, वैदेही ने रिवॉल्वर उसकी तरफ तान कर कहा। राघवेंद्र ने अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए थे। उसने सामने रखी टेबल पर रखे पानी के ग्लास से पानी पिया और फिर गहरी सांस भरी। मैं जानता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा उस पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यशवर्धन ने आपको ये तो ज़रूर बताया होगा कि किसी ज़माने में हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, राघवेंद्र ने पूछा। हाँ, वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, लेकिन तुमने उसे वहाँ भी धोखा दे दिया। क्या आप बता सकती हैं कि मैंने उसे क्या धोखा दिया, वैदेही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर राघवेंद्र मुस्कुराकर बोला, आपकी चुप्पी देखकर मैं समझ गया हूँ कि उसने आपको पूरी बातें नहीं बताई होगी। आपकी जगह कोई और लड़की होती तो सोच लेती कि प्यार मोहब्बत में नहीं पूछा होगा, लेकिन आप तो पूरी बातें सबूतों के साथ करती हैं। फिर इस बार आपसे चूक कैसे हो गई वैदेही जी? मैंने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे सबूत उसके खिलाफ नहीं तुम्हारे खिलाफ ढूंढने थे। मैं बिना वजह किसी के पीछे नहीं पड़ती। तुम अच्छे से जानते हो कि हाफुस गाँव में तुम्हारे रिश्तेदार महेश ने क्या कचरा फैला रखा है, वैदेही ने जवाब दिया। हाँ जानते हैं, और बहुत बार रोका भी है। अच्छा, तुमने उसे रोका है, तभी उसके यहाँ से तुम्हारी पार्टी में लड़कियाँ आई थी। तुम्हारे लिए स्पेशल तोहफे के रूप में 5-स्टार होटल के कमरे में लड़की को बेहोश करके लिटाया जाता है, वैदेही ने कड़े स्वर में कहा।
जानते हैं कि सिर्फ रोका ही है, कभी सख्ती से मना नहीं किया। हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हम जानते हैं कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं। हमने तो कभी कहा नहीं कि हम अच्छे इंसान हैं। अच्छाई के नकाब तो आपका कोई यशवर्धन पहनकर रखता है। कैसा नकाब, वैदेही ने हैरानी से पूछा। किसी महान इंसान ने कहा है वैदेही जी, जब दो आदमियों की आदतें एक जैसी हों तभी वो दोस्त बनते हैं। यश हमारा पक्का दोस्त था, कुछ तो आदतें एक जैसी होगी ना, तभी हम दोस्त बने। देखो, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो, बातें मत बनाओ। मैं बिना सबूत के तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाली। अब हम आपकी तरह न्यूज़ रिपोर्टर या कोई पुलिस वाले तो हैं नहीं जो पॉकेट में सबूत डालकर घूमते हैं। चलिए बाकी बातों को जाने दीजिए, शादी के बाद आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने हमारे खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए थे वो कहाँ है। वो सब यशवर्धन के पास है और वो मुझे रात के शो से पहले देने वाला है, वैदेही ने जवाब दिया। अच्छा, रात के शो से पहले देने वाला है, राघवेंद्र ने कहा और जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। वैदेही उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। उसने अपनी हंसी को काबू किया और कहा, सॉरी हम हंस रहे हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी बेवकूफ निकलेंगी, कहकर राघवेंद्र हंसने लगा। जो कहना है साफ साफ कहो, वैदेही गुस्से में चिल्लाई। आप हम पर क्यों चिल्ला रही हैं? आपको देखकर हमें लल्लन की याद आ गई, हमने आपको उससे मिलवाया था, याद होगा। बिल्कुल आपकी तरह है, अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा भोला है बेचारा। कोई भी इमोशनल होकर थोड़ा सा भी प्यार से बात कर ले तो बस वो उसी का होकर रह जाता है। राघवेंद्र की बातें वैदेही को चुभ रही थी। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारे लम्हे घूमने लगे जो उसने यशवर्धन के साथ बिताए थे। यशवर्धन का उससे पार्टी में मिलना और फिर गुंडों से हमला होने के बाद गाड़ी में एक साथ आना, इंटरव्यू के बाद फोन वहीं पर रहना और दोनों का राघवेंद्र के खिलाफ एक साथ काम करने का डिसीजन लेना, वैदेही को ये सब सिर्फ एक के दिखावे के अलावा और कुछ नहीं लग रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब तुम इसीलिए कर रही हो ना ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना लूं, वैदेही ने चिल्लाकर कहा। वो तो आप अब वैसे भी नहीं ले पाएंगी, ये तो वक्त बताएगा। भले ही त्यागी जी ने तुम्हारा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए दे दिया हो, लेकिन अब तुम्हें वो भी नहीं बचा पाएंगे राघवेंद्र प्रताप सिंह, वैदेही की बात सुनकर राघवेंद्र उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसके बाद में फिर से जोर जोर से हंसने लगा। वैदेही को उसके बर्ताव पर गुस्सा आ रहा था।